زمانہ کی غیبت سے کیا مراد ہے؟ ہم میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے اور یہاں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے یہ ہے کہ امام زمانہ غائب نہیں ہوئے بلکہ خود امت جو ہے وہ دنیا کی بجلی میں غائب ہو گئی. امام کو جہاں اللہ نے چھوڑا تھا وہیں امام تھے, رفتہ رفتہ امت نے ان سے رشتہ کمزور کیا, کرتے 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 چار آدمی رہ گئے جس کو موابین اربا کہتے ہیں. وہ امام سے ان کا رابطہ تھا, خود لوگوں نے رابطہ توڑ دیا. آئمہ کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہمارے سامنے ہیں. مثلا ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مانتے تو تھے اور مگر نہیں مانتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, تو امام نے حیرت سے دیکھا اس کو, کہا پہچانتے ہو جعفر صادق کو؟ کہا نہیں پہچانتا تو نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے. کہا اگر وہ آ کے کہہ دیں کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے تب کیا کرو گے؟ کہنے صاحب کہ تب بھی مانیں گے نہیں, اس لیے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے ہم کو وہ اتنے سچے ہیں کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. آپ کون ہیں؟ تو امام نے کہا میں وہی ہوں کہ جن کا قول تم دوہرا رہے ہو. کہنے لگے میں کیسے مان لوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے ہم سے بتایا ہے وہ اتنے مقدس ہیں, اتنے مقدس ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسے ماننے والے تھے تو رشتہ ٹوٹتا چلا گیا, امام سے رشتہ ٹوٹتا چلا گیا. کچھ حضرت علی کے دور میں لوگ الگ ہوئے, کچھ امام حسن کے دور میں الگ ہوئے, امام حسین کے دور میں الگ ہوئے. یہ وہ دور ہیں کہ جس میں کافی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی جو ولایت کے قائل تھی اور اپنا ولی بنائے ہوئے تھی, اپنا رہنما اپنا امام بنائے ہوئے تھی. خود امام حسین کے ساتھ جو اتنا بڑا مجمع آ گیا کربلا میں کہ وہ لوگ تھے جو امام کو پہچانتے تھے, امام کو جانتے تھے. لیکن جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی گئی, بیچ میں حکومتیں ڈسٹرب کرتی رہیں اور کچھ لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے شیعوں میں گھسا دیا اور شیعہ بن کے انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا جو آج شیعہ کہے جا رہے ہیں جو شیعہ تھے بھی نہیں. جیسے اسماعیلی جو پیدا ہوئے یہ بھی ایسے ہی لوگوں نے عناصر نے پیدا کیا اور ان کو تیار کیا. ایک دور وہ آیا اسماعیلیوں کا دور جب فاطمین کی حکومت ہوئی ہے مصر میں, تو انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم ولی ہیں اور ہم جو ہیں اس کا حق رکھتے ہیں, مگر وہ چونکہ اولاد رسول نہیں تھے لہذا ایک سید کو انہوں نے پکڑ لیا. اور جب وہ سید صاحب آتے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے ہیں, اب بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنی طرف سے بادشاہ بنائیے, تو اس کو لکھ کے پروانہ دیتے تھے کہ میں تم کو بادشاہ بنا رہا ہوں, خلیفہ بنا رہا ہوں, تم ملک کا انتظام کرو. اب گویا وہ جائز طور پر ان کو حق ہو جاتا تھا پھر جو چاہیں کریں, لیکن وہ ڈرتے تھے کہیں دوسرا ان کو پکڑ لے گیا اور پکڑ کے خود بن جائے گا خلیفہ, تو ان کو قید رکھتے تھے. اس بیچارے سید کو قید رکھتے تھے. چنانچہ ایک بھتیجے نے چچا بنا اور وہ سید صاحب نے یہ کہہ کہ چونکہ ہم اولاد رسول ہیں اور حکومت ہمارا حق ہے اور اس حق کو ان کو دیتے ہیں, وہ کسی سے طرح سے پچھلا دروازہ توڑ کے یا نقب لگا کے کسی صورت سے اس کو اڑا لے گیا وہ سید صاحب کو, اور جا کے خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. تو یہ سب دھندے ہونے لگے جس سے بہت نقصان ہوا اور امامت سے رشتہ ٹوٹتا چلا گیا. اب امام زمانہ کہیں گئے نہیں, اسی دنیا میں ہیں اور بیٹھے نہیں ہیں, معطل ہو کے کسی کوٹری میں بند نہیں ہیں. کہاں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کبھی ہمارے سامنے بھی آئے ہوں, کیا کر رہے ہیں یہ ابھی نہیں معلوم, مگر اتنا جانتے ہیں کہ دنیا پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں, زمانے کی نبضے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. جس وقت حکم الہی ہوگا اور جس وقت علم امامت ان سے کہے گا کہ اب ظہور کا وقت آ گیا ہے, وہ ظہور کریں گے. लेकिन इतना यकीनी है कि वो जो बीच में गैबत हायल हुई है उसका मतलब यह है कि हमने इमाम की शनाख्त की सलाहियत खो दी, इमाम की शनाख्त की सलाहियत खो दी, हम अलग हो गए, अब बगैर इमाम के हो गए। तो जब तक कि हमारे अंदर सलाहियत लौट के नहीं आएगी, इमाम तो हैं, कहीं से निकलना नहीं है उनको, हम पहचान नहीं सकेंगे उनको। और इसी को कहते हैं जब हम पहचानने लगेंगे, यानी इंसान जब पहचानने लगेंगे, उम्मत जब पहचान लेगी उनको, इसी को कहते हैं ज़हूर। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम उस रास्ते पर जिस पर इमाम ने हमको छोड़ा है उस रास्ते से मुनहरिफ न हो। तो पहली चीज यह है कि इमाम ने हमें कहाँ छोड़ा है, उसका जवाब यह कि इमाम ने हमें ज्यादा विलायत पर छोड़ा है, अलसक नहीं छोड़ा है कि जिधर चाहो चले जाओ, और इस तालीम के साथ हमें छोड़ा है। तो हमें उस राह विलायत से नहीं हटना चाहिए, चाहे फर्ज कीजिए कोई वली नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर यह तय करना चाहिए हमें कि अगर कोई हमें वली मिल गया, खा वो मासूम न हो, लेकिन ऐसा हो कि जो विलायत की जिम्मेदारी अदा करता हो, और हमें यकीन हो जाए, हमें इल्म हो जाए कि हमारी सही रहनुमाई करेगा, हमारे किसी गाड़े में न गिराएगा, तो हमें उसके साथ चलना पड़ेगा तनहा अपनी डफली बजाने से के मुकाबले में उसकी इताअत करनी पड़ेगी। तो और दूसरी जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें कि हम इमाम को पहचान लें। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि उम्मत ने 11 को पूरी तरह पहचाना नहीं, और अगर कहीं आखिरी आए और हमने नहीं पहचाना तो वही पोजीशन होगी जो इससे पहले थी। उसी वक्त आएंगे जब पहचानने वाले मौजूद होंगे। हम अपने अंदर सलाहियत पैदा करें इमाम को पहचानने की, उस सलाहियत पैदा कैसे होगी? अगर हमने 11 को पहचान लिया तो 12 को पहचान ले गए, मगर वही मुसीबत होगी कि पैगम्बर इस्लाम को सादिक भी मानते रहे, अमीन भी मानते रहे, हर दिल अजीज भी थे, मोहब्बत भी करते रहे, जहां पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अब मानने के लिए तैयार नहीं, नबी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? नबी ऐसा नहीं होता, उसके साथ फौज क्यों नहीं है फरिश्तों की, उसके साथ मलाइका क्यों नहीं है, उसका घर सोने का क्यों नहीं है, वो फाका क्यों कर रहा है, वो बकरी का दूध क्यों दूह रहा है, वो बकरी का दूध क्यों दूह रहा है, इस तरह के सवाल उनके जहन में पैदा हुए। अगर इमाम जमाना आए तो कम से कम उस तरह के सवाल हमारे जहन में न पैदा हों। फर्ज कीजिए कि इमाम आते हैं मामूली कपड़ा पहने हुए, लंदन में कुछ लड़कों ने कहा कि इमाम जमाना की गैबत के जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो हमने कहा यही है कि हम अपने अंदर सलाहियत पैदा करें उनको पहचानने की, कि जब वो हमें आवाज दें तो हम उनके साथ हो जाएं। तो उनका वो तो हम पहचान लेंगे। तो मैंने हंस के उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए इमाम जमाना सफेद अमामा बांध के आएंगे कि सिया? तो बर्जस्ता उसने कहा कि सफेद तो बांध के आ ही नहीं सकते, इसलिए कि वो सैयद हैं। तो हमने कहा यही आपने पहचाना है, इसलिए कि रंगों का ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं। इस्लाम तो कहता है रंग सिर्फ अल्लाह का है, बस, बाकी किसी रंग की कोई कीमत नहीं है, न स्याही की न सफेदी की। और हमारे 11 मासूमीन उनमें कभी किसी ने सिया अमामा नहीं बांधा, न रसूलुल्लाह ने सिया अमामा बांधा, न हज़रत अली ने सिया अमामा बांधा। तमाम रवायात उनकी सवान हयात लिखी हुई किताबों में। और इमाम रज़ा अलैहि सलाम दरबार मामून में जाते थे सफेद अमामा बांध के जाते थे। ईद के नमाज का जो जिक्र है तारीख में, उसमें भी साफ वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाप रहना, नंगे पैर और सफेद अमामा बांधे हुए मस्जिद की तरफ रवाना हुए, और पूरा बगदाद पीछे हो गया, पूरा बगदाद पीछे हो गया। तो इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि आदमी समझ ले कि रंगों का ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है, और इमाम रंगों के जरिए नहीं पहचाने जाएंगे। न लिबास के जरिए पहचाने जाएंगे, इसलिए कुरान कहता है लिबास लिबास तो सबसे अच्छा लिबास लिबास तकवा है। अब वो लिबास तकवा अगर कोट पैंट पर भी है तो है लिबास तकवा। ये समझना कि इमाम आएंगे तो इतनी लंबी कबा होगी और इतनी लंबी आबा होगी, तो इसका मतलब कि अभी आपने में पहचानने की सलाहियत नहीं है। कौन सा लिबास पहन के आएंगे हमें कुछ नहीं मालूम, मगर इतना मालूम होना चाहिए कि लिबासों के जरिए तशख्खुस कायम करना न पैगम्बर इस्लाम की सीरत रही है, न हजरत अली की सीरत रही है, न इमाम हसन की सीरत रही है, न इमाम हुसैन की सीरत रही है। अगर तशख्खुस कायम करते लिबासों के जरिए से तो जो लोग आते थे मिलने के लिए और आके पूछते थे कि भाई तुम्हारे पैगंबर कौन हैं और तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन अली कौन हैं और इमाम हुसैन कौन है और इमाम हसन कौन है, हद ये कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, हज के पूरे काफिले में साथ रहे काम करते रहे उन्होंने नहीं पहचाना। अगर लिबास से तशख्खुस वो कायम करते अलग से अपना लिबास, तो कभी कोई ये न कहता कि कौन है आपके नबी और कौन है आपके इमाम, वो दूर से देख के पहचान लेते, दूर से देखते पहचान लेते। इसका मतलब कि इमाम को लिबासों के जरिए नहीं पहचाना जा सकता, इमाम को रंगों के जरिए नहीं पहचाना जा सकता, इमाम को इल्म और किरदार और तकवा के जरिए पहचाना जा सकता है, सच्चाई और सदाकत के जरिए पहचाना जा सकता है। अगर उसकी कीमत है हमारी नजरों में और कौम की नजरों में तो यकीनन पहचान लेंगे, अगर उसकी कोई कीमत नहीं है तो वही हाल होगा जैसे पैगंबर का इनकार किया कि हम कैसे मान लें। मगर इमाम उसी वक्त आएंगे जब उनको पहचानने वाले इतने पैदा हो जाएंगे कि जिनसे एक ताकत पैदा हो जाए। बस ये दो हो गए।